न्यायियों अध्याय 19। उन दिनों में जब इसराइलियों का कोई राजा ना था। न्यायियों 19 पहला पद। देखिए यहाँ फिर लिखा है कि वो उस समय की बात है जब उनका कोई राजा या शासक ना था, जबकि इसराइल का राजा यहोवा था और इसराइली उसकी प्रजा, परंतु उनके पास संसारिक राजा नहीं था। दूसरे शब्दों में वे परमेश्वर को अपना राजा नहीं मानते थे, सब अपनी मन मर्जी करते थे। वहां अराजकता का राज्य था। कहने का अर्थ ये नहीं कि वे अपनी मन मर्जी से भलाई करते थे, नहीं, वे दुराचारी थे। तब एक लेवीय पुरुष एप्रेम के पहाड़ी देश की परली और परदेशी होकर रहता था, जिसने यहूदा के बेतलेहम में की एक सुरैतिन रख ली थी। न्यायियों 19 पहला पद। याजक को रखेल रखना मना था, परंतु वे अन्य जातियों की नीति पर चल रहे थे। इस स्त्री ने उसे त्याग दिया और अपने पिता के घर बेतलेहम चली गई। वो वास्तव में एक वेश्या थी। इन दोनों में पति पत्नी के संबंध थे, अतः वो उसके लिए ललकने लगा। उसने सोचा कि जाकर उसे मना लाए। आज बहुत से लोग अविवाहित संबंधों को बड़ा आधुनिक मानते हैं, परंतु ये तो वास्तव में पिछड़ेपन का संकेत है। पाप तो दुनिया के आरंभ से ही है। अतः वो बेतलेहम उसके पिता के घर गया। उसके पिता को वो अच्छा लगा। उसके पिता ने उसे खाने पीने के लिए रोक लिया। सांझ को वो प्रस्थान हेतु तैयार हुआ तो उसके ससुर ने कहा, अब रात हो गई है, कल जाना। दूसरे दिन वे फिर पीने खाने बैठ गए और शाम हो गई तो उसने कहा, आज तो मुझे निकल ही जाना चाहिए। उसके ससुर ने कहा, रात होने वाली है, कल जाना। अगले दिन फिर खाने पीने में दोपहर हो गई। जब उसने जाना चाहा तो उसके ससुर ने उसे फिर रोका, परंतु वो अपने गधों और सेवकों तथा अपनी रखेल को लेकर घर की ओर रवाना हुआ। वे बेतलेहम से 5 मील चलकर यबूस, जो यरूशलेम कहलाता है, पहुंचे। उसके सेवक ने सलाह दी कि वे वही रात बिताएं। उस याजक ने वहां रुकने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो इसराइलियों का नगर नहीं था। वे चलते चलते शाम को पहुंचे। रुकने के लिए उन्हें वो स्थान मन पसंद नहीं लगा, तो वे चलते हुए गिबा पहुंच गए। ये बिन्यामिनियों का नगर था। उसने अपने सेवक से कहा, हम रात यही बिताएंगे। और वे आगे की ओर चले और उनके बिन्यामिन के गिबा के निकट पहुंचते पहुंचते सूर्य अस्त हो गया, इसलिए वे गिबा में टिकने के लिए उसकी ओर मुड़ गए। और वो भीतर जाकर उस नगर के चौक में बैठ गया, क्योंकि किसी ने उनको अपने घर में न टिकाया। न्यायियों 19:14-15। इस युग में धर्मशालाएं या होटल नहीं थे। अतिथि सत्कार वही की प्रथा थी। लोग परदेशियों को अपने घरों में ठहराते थे। वो चौक में बैठ गया, परंतु उसे किसी ने अपने घर में आमंत्रित नहीं किया। तभी एक वृद्ध जो एप्रेम वंशी था वहां से निकल रहा था। उसने उस याजक से कहा, आकर मेरे घर में रुक। याजक ने पूछा, वो कौन था? उसने कहा, मैं एप्रेम वंशी हूं और बेतलेहम से आ रहा हूं। ओह, मैं भी एप्रेम वंशी हूं। तब वो उसे अपने घर ले आया। रात आने पर नगर वासियों ने उसका दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और कहा, जो पुरुष तेरे घर में आया उसे बाहर ले आ कि हम उसे भोग करें। न्यायियों 19:22 पद। इसी कारण परमेश्वर ने सदोम का नाश किया था। यहां तो परमेश्वर की अपनी प्रजा बिन्यामिनियों का ये हाल है। अब आप देखते हैं कि उनकी नैतिक दशा कितनी खराब थी और ये वहां की संस्कृति का उन पर क्या प्रभाव पड़ा था। उस वृद्ध ने कहा, मेरी कुमारी बेटी को ले जाओ, परंतु इस पुरुष से ऐसी मूर्ता का काम मत करो। नारियों, प्रभु का धन्यवाद करो कि यीशु ने तुम्हें परमेश्वर की दृष्टि में समतुल्य स्तर प्रदान किया है। नहीं तो किसी भी संस्कृति में महिलाओं को कोई स्थान नहीं था, उसे हमेशा अपने अधीन रखा जाता था। उसका जीवन एक दासी के समान ही होता था। उसे पुरुष जब चाहे तब गिरवर रख सकता था। उसे कूड़ा समझा जाता था। आज भी आप इसराइल में बद्दू स्त्रियों का स्थान देखिए और प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि उसने आपको पुरुष के बराबर स्थान दिया है और आपको आदर, महिमान्वन और सम्मान प्रदान किया है। उस समय तो यीशु का आगमन नहीं हुआ था, तो वहां की संस्कृति का अनुसरण कर रहे थे। उस वृद्ध ने याजक की रखेल को बाहर कर दिया। बिन्यामिनियों ने पूरी रात उसके साथ दुष्कर्म किया और जब प्रातः काल उसे छोड़ा तो वो घर में प्रवेश करने से पूर्व ही द्वार पर मर गई। याजक बाहर निकला तो देखता है कि वो स्त्री मर चुकी है। उसने उसकी लाश को अपने घर लाकर उसके 12 टुकड़े किए और प्रत्येक गोत्र को एक एक टुकड़ा भेज दिया। इसका परिणाम वही निकला जो उसने आशा की थी। एक स्त्री की देह के टुकड़ों को पाकर गोत्र स्तब्ध हो गए। किसी को हाथ, किसी को पैर, किसी को वश, किसी को सर आदि। उसे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने उन्हें पूरी कहानी सुना दी। अत्यंत क्रोधित होकर उन्होंने बिन्यामिनियों से युद्ध करने की ठान ली और 400,000 से अधिक योद्धा इकट्ठे कर लिए।